आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनी
बस कर लिया, पानी नहीं पिया क्यों? छोटे छोटे बच्चों ने कर लिया। एक पुस्तक शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम न देवो न बंधुर्न कर्मा न कर्ता न बंधुर्न कर्मा न कर्ता न गंगम न संगम न स्वेक्षा न कायम चिदानंद रूपम ममो वीतरागम चिदानंद रूपम ममो वीतरागम न बंधो न मोक्षो न रागादि दोषो
न बंधो न मोक्षो न रागादि दोषो
न योगम न भोगम न व्याधिर न शोका
न भोगम न व्याधिर न शोका
न कोपम न मानम न माया न लोभम
न मानम न माया न लोभम
चिदानंद रूपम नमो गीतरा न हस्तौ न पादौ न घ्राणम न जिह्वा
न हस्तौ न घ्राणम न जिह्वा
न चक्षुर्न कर्णम न वक्त्रम न निद्रा
न चक्षुर्न कर्णम न वक्त्रम न निद्रा
न स्वामी न भृत्यो न देवो न मर्त्या
न स्वामी न भृत्यो न देवो न मर्त्या
चिदानंद रूपम नमो गीतरागम नमो गीतरागम न जन्मम न मृत्यु न मोहम न चिंता
न मृत्यु न मोहम न चिंता
न क्षुद्रो न भीतो न कार्श्यम न चंद्रा
न भीतो न कार्श्यम न चंद्रा
न स्वेदम न खेदम न वर्णम न मुद्रा
न खेदम न वर्णम न मुद्रा
चिदानंद रूपम नमो गीतरागम रूपम नमो गीतरागम त्रिदंडे त्रिखंडे हरे विश्वनाथम विश्वनाथम ऋषिकेश विश्वकर्मादिजालम
ऋषिकेश विश्वकर्मादिजालम
न पुण्यम न पापम न चाक्षादिगात्रम
न चाक्षादिगात्रम
चिदानंद रूपम नमो गीतरागम न बालो न ब्रह्मो न पुष्यो न मोहो
न ब्रह्मो न पुष्यो न मोहो
न खेदम न भेदम न मूर्ति न स्नेहा
न खेदम न मूर्ति न स्नेहा
न कृष्णम न कृष्णम
Thank you.
पूजा की भूमिका या तीर्थिका कहते हैं, उसमें कैसे भाव होना चाहिए जो आचार्यों ने लिखा है, अपन इस बात को समझ रहे हैं। क्योंकि वो संस्कृत में कहा है तो उसका क्या अर्थ है, अगर अपने दिमाग में वो अर्थ रहे, भले ही शब्दार्थ न रहे पर भावार्थ तो बना रहे कि हम किस भाव से पूजा कर रहे हैं, वो अपन कर रहे। दो पद और रह गए उसमें याद करना। इस घड़ी में अभी पौने 5 बजे हैं। अगर इसके हिसाब से चलूंगा तो उसके बाद रख लेना आप आराम से, है ना।
Thank you.
द्रव शुद्धि को बोलते हैं बाह्य शुद्धि और भाव शुद्धि को बोलते हैं अंतरंग के परिणामों की शुद्धि। शरीर की शुद्धि को द्रव शुद्धि कहेंगे, वचन की शुद्धि को भी द्रव शुद्धि ही कहेंगे, लेकिन मन की शुद्धि को भाव शुद्धि कहेंगे। तो कह रहे हैं कि द्रव्य से शुद्धि अधिगम, मैंने शरीर की जितनी भी शुद्धि बाह्य हो सकती थी यथानुरूपम मैंने वो कर ली। भाव से शुद्धि अधिकाम अधिगम से काम, मेरे इस बाह्य शुद्धि का उद्देश्य यह नहीं था कि मैं सिर्फ बाह्य शुद्धि ही करूँ, मेरा उद्देश्य तो अंतरंग के भावों की शुद्धि का, मेरी कामना अंतरंग के भावों की शुद्धि की है, तो वह भी मैंने जितनी बनी है वो करके आया हूँ और यहाँ अपने भावों की शुद्धि और करना चाहता हूँ। अधिकाम अधिगम की कामना, मैंने उसको प्राप्त भी किया है भावों की शुद्धि को और प्राप्त करना भी चाहता हूँ। पूर्णता भावों की शुद्धि हो जाती तो पूज्य पूजक का भाव ही नहीं रह जाता, फिर पूजा किसकी, क्योंकि अभी पूरी शुद्धि नहीं है भावों की, पर जितनी आवश्यक है कितनी आवश्यक है भाव शुद्धि। मन में संकलेश ना हो, मन में रागदेश का भाव ना उठे, इस तरह का विचार अपन बोलते ना मन शुद्धि वचन शुद्धि काय शुद्धि। तो मन शुद्धि के मायने क्या है, मन में किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष मात्सर्य ये भाव नहीं है, बस यही मन शुद्धि है। इसके अलावा कैसे कर सकते हैं, श्रद्धा भक्ति जो कि हमारे मन में रहेगी ही। कह रहे हैं आलम्बनान विविधान्य अलम्ब्य अवलम्ब्य वलगन, अब मैंने अपने उस भाव की शुद्धि को पाने के लिए द्रव्य की शुद्धि तो जितनी हो सकती थी जो करके आया हूँ, भाव की शुद्धि भी करी है लेकिन उतनी नहीं हो पाई। मैं भावों की शुद्धि चाहता हूँ, उसके लिए अपने भावों को कहीं ना कहीं लगाए रखने के लिए बहुत प्रकार के आलम्बन चाहिए मुझे। तो भगवान की वीतराग मुद्रा एक आलम्बन है और फिर जो अष्ट द्रव्य जो भी आलम्बन है ताकि हमारा मन अंदर रहे उसमें लगा रहे, ऐसे खाली हाथ जोड़ करके पूजा करो तो अलग चीज़ है, और अगर अब जल चढ़ाना है अब चंदन चढ़ाना है यहाँ वहाँ मन नहीं जाएगा, जल चंदन में अक्षत में इनमें हमारा मन इनके आलम्बन से रुका रह जाता है। इसलिए जो हमने बाह्य में जो भी आलम्बन है विविध प्रकार के उनको प्राप्त करके भूतार्थ यज्ञ पुरुष करो यज्ञ। अब इसका अर्थ जो है थोड़ा कैसे लगाएंगे, सोच रहा था कि करोम यज्ञ में पूजा कर रहे हैं यह तो ठीक है, पुरुष का अर्थ यहाँ पर हमारे ख्याल से पुरुष का अर्थ आत्मा लेना चाहिए, वास्तव में भूतार्थ यानी जो वास्तविक पूजा है वह तो आत्मा में जीती ही है, आत्मा की प्राप्ति ही वास्तविक पूजा है, मैं इसी के लिए यह भगवान की पूजा कर रहा हूँ। यह अर्थ भी इसमें से और क्या लिया इसमें से खा लिया था ये मैं, क्योंकि मैंने भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्थ पुरुषस्थ आत्मा है ना वही निकलना चाहिए। तो इस तरह का अर्थ हुआ मैंने शरीर की जितनी शुद्धि बनी है उतनी करी है, मन की भी करी है, लेकिन मैं इस भावों की या मन की शुद्धि के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे पूजा का उद्देश्य अपने भावों की शुद्धि है और इसी भावों की शुद्धि के लिए मैंने शरीर की शुद्धि करी है और विभिन्न प्रकार के अस्त्र द्रव्य और भगवान की मूर्ति ये सब मेरे लिए आलम्बन है, मैं इनके द्वारा भगवान की पूजा करता हूँ। क्या कर रहा हूँ, मैं वास्तव में अपने ही आत्मा की प्राप्ति करना चाहता हूँ, अर्थात आत्मा के परमात्म अवस्था की प्राप्ति जो भगवान ने प्राप्त कर ली है वही अवस्था मैं भी प्राप्त करना चाहता हूँ। और अब अंत में कह रहे हैं अरेहं पुराण पुरुषोत्तम पावनानि
सुमति षष्ठी षष्ठी श्री पद्म प्रभा शीर्षपाशा षष्ठी षष्ठी श्री चंद्र प्रभा श्री पुष्पदम षष्ठी षष्ठी श्री शीतला श्री श्याम षष्ठी षष्ठी श्री वासुपूजा श्री विमना षष्ठी षष्ठी श्री अनंता श्री धर्म षष्ठी षष्ठी श्री शांति श्री कुंज षष्ठी षष्ठी श्री अरनाथ श्री मल्ली षष्ठी षष्ठी श्री मुनिष्ठा श्री नमी षष्ठी षष्ठी श्री मेनिनाथ श्री पार्श षष्ठी षष्ठी श्री वर्धमान। इस तरह से ये चौबीसों तीर्थंकर हमारे लिए मंगलकारी हैं, हमारा कल्याण करने में निमित्त बने। इस तरह की भावना से ही अपन ने कर लिया। फिर 64 सिद्धियों का वर्णन आएगा, वो बात की चीज़ है, देख लेंगे। कल एक प्रश्न था, वो कहाँ चला गया है क्या इसमें? वो उन्होंने किसी को कंटिन्यूशन बताने का मेरा मन था, पर कल टाइम हो गया था। उसमें ऐसा कुछ था, ये था, आपके द्वारा बताया गया भक्तांबर वसंत तिलका छंद में पढ़ना चाहिए, तो कृपया एक छंद आप थोड़ा पढ़ करके बताने की कृपा। ये कल पूछ रहे थे, हमने कल आपको कहा भी था कि इसकी जो मैंने छंद की जो लय है वो तो बहुत सीधी सीधी से है, बहुत सुदीर्घ का हो गया पूरा। वो तो है, जो अपन को आता है तो वही अपने को आएगा, उसके अलावा दूसरा तो आया सीखना ही नहीं अपने को। हाँ, तो वो जो ओरिजिनल है वो नहीं सुनेंगे अपन, जो अपन ने पढ़ रखा है उसी के साथ उसको मिला लेते हैं। जिसकी पट्टी पर कुछ लिखा रहता है ना, मुझे बहुत दिक्कत होती थी उसको लिखने में, पहले उसको मिटाओ फिर लिखो। जिनकी फ्रेश रहती है तो उनको फर्स्ट बन जाएगा कि हाँ ये है, वो एकदम थोड़ी इतना आएगा, फिर से उसकी लय पकड़नी पड़ेगी। भक्तामर प्रणतमालिमन प्रभाना मुच्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा बालं वनं भवजये सततां जनाना। ऐसा कुछ थोड़ा सा इसी तरह की लय में, और वो आएगा एग्जैक्टली। तो आपको अगर सुनना है तो कभी आचार्य महाराज के चरणों में निवेदन करेंगे तो और अच्छे से वो इस वचन तिलका छंद को सुनाएंगे, और उसके बाद दूसरे नंबर पर सुना पाते हैं नियम सागर जी एकदम एग्जैक्ट। वो भी हमसे बड़े महाराज, नियम सागर जी महाराज को भी बहुत अच्छा। हम बच्चों की इच्छा है कि आज आप हमें एक भजन सुनाएं, बहुत अच्छी इच्छा है। ठीक है जी, हमारा मन पढ़ाई में नहीं लगता तो क्या करें, तो लगाओ। कैसे लगाओ? मुझे नहीं पढ़ूंगा तो फेल होऊंगा, फेल नहीं होऊंगा तो भी कम नंबर आएंगे, मेरा ज्ञान भी कम रह जाएगा, इसलिए मुझे पढ़ना चाहिए। एक चीज़ अपने भीतर ये, और मैं पढ़ने में जिस विषय में कच्चा हूँ उसका मुझे और अधिक अभ्यास करना चाहिए। अभी मैं 1 घंटे पढ़ता हूँ, अब मुझे 2 घंटे पढ़ना चाहिए। मन नहीं लगता, मतलब नहीं दे, इससे क्या फ़र्क पड़ता? तो कितनी सारी चीज़ें हैं जिनको हमें बिना मन का करना पड़ता। करो, मन नहीं लगता फिर भी पढ़ेंगे। अभी 1 घंटे पढ़ते थे, अब और 2 घंटे पढ़ेंगे, देखें कैसे नहीं लगता मन। संकल्प कर लेने से बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। बच्चों को पढ़ने का संकल्प कर लेना चाहिए, रोज़ रोज़ 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के संकल्प कर लिया कि 1 घंटे तो टेबल से हटूंगा नहीं, किताब सामने रहेगी, मत लगने दो मन। लेकिन यहाँ वहाँ नहीं जाऊँगा, मन नहीं लग रहा, इसलिए चलो घूम के आते हैं, इसलिए चलो खेल के आते हैं, इसलिए चलो कि टेलीविज़न देख लेते हैं। नहीं, वो उतनी देर भी अगर 1 घंटे आप किताब हाथ में लिए रहें बिना मन के भी पन्ने पलटते रहें, आप आश्चर्य करेंगे कि कुछ दिन के बाद अपने आप उस चीज़ में आपका मन लगने लगेगा, क्योंकि उतनी देर तक आप और दूसरी चीज़ों से अपने ज्ञान को बचाए रखा आपने।
नहीं तो हम खाली टाइम में दुनिया भर की चीज़ें जानने में अपने ज्ञान को लगाए रखते हैं, फिर जो मेन चीज़ है उसके जानने के लिए और कहाँ से लाएंगे। जितना सर्वोत्तम है उसके माध्यम से संसार की बातें जान लो, या कि अपनी पढ़ाई कर लो, या कि और दूसरी चीज़ कर लो, एक आध को छोड़ पाएगा। इसलिए दो ही चीज़ें ध्यान में रखने की कि मुझे पढ़ना चाहिए, ऐसा इंटरेस्ट अपने मन में क्रिएट करना, और दूसरा अगर पढ़ने मन नहीं लगता तो संकल्प करके पढ़ना शुरू करना, और या फिर जो पढ़ने वाले हैं उनके साथ में बैठने से, उनके साथ अच्छी संगति में रहने से भी पढ़ने का। देखो अगर अपनी कक्षा में अपन के 70 नंबर आते हैं और किसी के नहीं आते हैं तो अपन क्या कहेंगे, अरे हम बहुत होशियार हैं और हमको क्या करना। और अगर किसी दूसरी कक्षा में पहुंच जाओ, वहाँ के बच्चों के तो 80-80 नंबर आते, तो अपन को अपने 70 नंबर कैसे लगेंगे। और पढ़ना चाहिए, यहाँ पे 70 नंबर लाना कोई विशेष बात नहीं है, हम तो अपने कक्षा में सोचते थे कि बहुत विशेष बात है। तो दूसरे को देख करके भी हमारे मन में उत्साह जागृत होना चाहिए, देखो उसका तो इतना मन लगता है, मेरा क्यों नहीं लगता, मुझे भी लगाना चाहिए, बार बार मुझे अभ्यास करना चाहिए। ऐसे करेंगे लगेगा भैया रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता, अब जब आएगा तब बताएंगे, अभी तो क्या बताएंगे, तो फिर उस दिन क्या बताएंगे, बताओ मोक्ष सप्तमी के उपवास की कहानी बता दें। देखो हमने सवेरे भी सुनाई थी भैया, सुबह नहीं थे क्या आप, एक सेठ जी के एक राजा के यहाँ पर दो बेटियाँ थीं, दोनों के अंदर बहुत प्रेम था। फिर वो बड़ी भी हो गई तो उन्होंने इतना प्रेम था कि उनका विवाह एक ही घर में करना पड़ा, तो दोनों का विवाह एक ही घर में हो गया। वो फिर भी एक साथ रहने लगे। फिर एक मुनि महाराज जी आहार करने के लिए आए, चारण बुद्धिधारी थे, उनको पूर्व भाव के बारे में पूछा, उनको बहुत ज्ञान था तो उन्होंने बता दिया कि ये दोनों पूर्व भाव में एक बार एक तो सेठ की बेटी थी और एक माली की बेटी थी, लेकिन दोनों ने वहाँ उस समय जो मुनि महाराज ज्ञान में आए थे उनके पास, उन्होंने मुनि महाराज के कहने से ये मुकुट सप्तमी व्रत दोनों ने एक साथ करा था। उसके फलस्वरूप वे पहले स्वर्ग में गई और स्वर्ग से आकर के उस राजा की दोनों बेटियां हो गईं। इतनी बात सुनकर के उन दोनों बेटियों ने, जिनके विवाह हो गया था, बड़ी हो गई थी, उन्होंने कहा अरे हमारा पूर्व जीवन ऐसा था तो अभी भी हम वर्तमान में भी मुकुट सप्तमी व्रत धारण करेंगे। और फिर उन्होंने तो सावक के व्रत ले लिए, मुकुट सप्तमी का व्रत 7 साल का करा। तो कहते हैं कि उससे उनको उस स्त्री परिवार से मुक्ति मिल गई, दोनों जाकर के एक इंद्र और एक सतींद्र हो गई और वहाँ से आकर के और अब मोक्ष जाएंगी। सार्थक हो गया उपवास करना, मुकुट सप्तमी का व्रत करना, क्यों सार्थक हो गया, हमारे अपने भाव इस तरह के हम बनाएं कि हमको इसके माध्यम से क्या पाना है। सबसे पहले तो सबके प्रति हमारे मन में प्राणी मात्र के प्रति दया करुणा और प्रेम का भाव आए और धीरे धीरे हमारी मुक्ति संसार से हो। ये उसकी कहानी है भैया, और क्या बताएं। महाराज छोटे महाराज जी बफर सिस्टम, इसका मतलब है कि आप कृपा करके अंग्रेजी की टांग नहीं तोड़ो। आपको जब ये नहीं मालूम कि इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं तो आप बफर क्यों बोलते हैं, बफर सिस्टम है वो। हाँ आप U-B-U-F-F-U-B-U-F-F-E बुफर, हाँ U-F-F-E बुफर सिस्टम है ये। बुलसाट और बुफर दो सिस्टम होते हैं, ब्रिटिश के हैं ये दोनों। एक में जो है सेल्फ सर्विसिंग रहती है, दूसरे में परोसा जाता है, और परोसने वाला ऐसा नहीं होता है, परोसने वाला इतने बड़े बड़े ग्लोब पहने रहता है, उसके हाथ से टकनी होती कोई भी चीज, और एक प्लेट में एक ही आइटम जाता है, उसके बाद प्लेट रिजेक्ट हो जाती है। जितना रईस आदमी होगा उतनी प्लेट चलाएगा, 2000 लोगों के लिए अभी तक अधिकतम 16 प्लेट की डिश दी गई है, उससे ज़्यादा किसी का रिकॉर्ड नहीं है, बहुत सबके रही। और सैनिक छोटी मोटी ऐसी नहीं कागज की प्लेटों में, बढ़िया प्लेट में एक आइटम एक प्लेट में दे दिया तो दूसरा आइटम उसमें नहीं जाएगा, वो प्लेट रिजेक्ट, 2000 प्लेटें एक आइटम के बाद रिजेक्ट, फिर दूसरी 2000 प्लेटों में दूसरा आइटम, और वो जो पहने दस्ताने पहने रहते हैं परोसने वाले, उसके वाइज कमरा होता है जिसमें कि सारी सामग्री ओपन, क्योंकि सामग्री को ओपन खोलना यानी कंटामिनेशन की तैयारी करना, पॉल्यूशन वातावरण के सारे जीव राशि इसमें इतना ध्यान रखकर कीजिए। ये कभी होटल मैनेजमेंट पढ़ो तो उसके लिए ये है, अपन तो है नकल की, हाँ अकल के बिना नकल करेंगे तो ये स्थिति, ग्राउंड में पानी छिड़का देखो ग्राउंड में पानी छिड़का, हो गया इनका शुद्ध चौका, और शुरू हो गया था यहाँ पानी का स्टॉल लगा है, यहाँ पर फलानी चीज मिल रही, यहाँ पर दाल फ्राई हो रही, यहाँ पर आलू की सब्जी बन रही, यहाँ पर भट्टी लगी हुई है, और भट्टी लगी है तो उसमें वो तंदूरी रोटियाँ, अभी आया पेपर में कि तंदूरी रोटियाँ खाना और शाकाहारी अपने आप को मानना दोनों चीज़ें कंट्राडिक्टी हैं, आप अपने को प्यार से मांसाहारी मान लीजिए अगर आप तंदूरी रोटी खाते हैं। बस सीधा सीधा लिख दिया उन्होंने, अब भी मेरे पास अभय सागर जी महाराज के पास से आचर जी के पास से आए हैं कि इस चीज़ को आप प्रचारित करवाइएगा, वो पूरा प्रिंटेड मैटर आया है कि कोई भी तंदूरी आप अपने घर में नहीं बना सकते, वो जो बनाने वाले आए हैं उनके बारे में आपको नहीं मालूम कि क्या मिलाएंगे, कौन सी चीज़ बनाएंगे, आपने तो ऑर्डर दिया है तंदूरी, वो क्या लेके आए हैं आटे में क्या मिलाए आपको मालूम, आपको तो खाने से मतलब है, तो तंदूरी रोटी इस तरह से, और वो भी चलते फिरते, और कितना कंटामिनेशन, लाइट जल रही है वहाँ पर, जो चीज़ जैसी है उसको वैसा अपन कहें, ज़्यादा अतिशयोक्ति करने से कोई नहीं मानने वाला, एग्जैक्ट जो चीज़ है वो अपन कहें कि उसको खुद हैंडल करने वाला हम कोई भी हो, खुद हैंडल करना भला आदमी नहीं है जो खुद हैंडल करता, ये बात मान के चले, क्यों अपन उसको ये कहें कि फलाना नहीं, वो लेकिन ठीक नहीं है, वो जो बनाता है उसका अपना कोई धर्म नहीं है, उसको तो सिर्फ पैसा कमाना है, इसलिए इस सिस्टम का निषेध तो होना ही चाहिए, वो सर सिस्टम जो रात में हो रहा है उसमें तो हमें शामिल, ये हम कई बार कह चुके, प्यार से भी कह चुके, महाराज जी जो आपको संकल्प भी दिलाते हैं, इससे ज़्यादा अपने बैठ करके अपने हाथ से भी लेके खा लिया तो उसमें दोष नहीं है, दोष इसमें है कि आपने जो रात में और किसी और दूसरे से रोटी बनवा रहे हैं और वो ऐसे पेटते जा रहा है और उसका पुथा उठा करके खाते चले जा रहे हैं, ये तो बिल्कुल ही अवस्थ हो गया, इसमें तो कोई सवाल ही नहीं कहीं से कहीं का, इसलिए इस चीज़ को आप इस तरह से समझें, और बफे सिस्टम के मायने ये नहीं है कि खड़े होकर के खाया जाता, ये ध्यान रखना, खड़े होकर खाने का है नहीं, टेबल कुर्सी पर बैठ करके खाया जाता, बस इतना जरूर है कि आपके सामने पेट रखिए तो आप चम्मच से, हाथ से छूने का काम नहीं है, चम्मच से उठा करके आपको जो चीज़ चाहिए ले लीजिएगा और उसकी चम्मच उसी में रख लीजिए, अपने खाने वाली चम्मच से मत खाइएगा उसको, हाँ नहीं आप उस चीज़ को कभी आप मैनेजमेंट का कोर्स तो देख लें अपन, होटल मैनेजमेंट का उसमें लिखा हुआ है उसकी चम्मच उसी में डली रहती है, उसी चम्मच से उठा के अपने पड़ोस में चुपचाप, क्यों ऐसा क्यों करना पड़ा, वहाँ पर कोई किसी का नहीं है विदेश में न कोई कुछ फुर्सत है कि आपके लिए परोसे, ये भारत है, भारत में हम एक दूसरे को खिलाने का आनंद जानते हैं, वो क्या जाने आनंद, वो तो खाने का आनंद जानते हैं अपना, और हम यहाँ पर हम लोग तो आधा भोजन तो हम खिलाते ही संतुष्ट हो जाते हैं, हम महाराज की आहार करवाते हैं, हम बाद में लोगों से पूछते कि जाओ कहते भूख ही नहीं लगी, मजा आ गया आज तो आहार देकर के, कहाँ चले गए भूख, दूसरे अपने घर में चार मेहमान आ जाते हैं उनमें अपन ऐसे एंगेज हो जाते हैं, अब नहीं होते होंगे, पहले के लोग तो चार मेहमान आ गए उनमें बढ़िया से जो है उनको परोस रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, आनंद है, ये खिलाने का आनंद, अब उनको खिलाने की फुर्सत नहीं है, सुनने की जो घर है तुम अपने हाथ में परस ले ले लो और खा के चले जाओ, ये प्रक्रिया अपनी थोड़ी है भारतीय संस्कृति की, हम तो प्यार से कहकर अरे एक और ले लो भाई, एक और थोड़ा सा, अरे थोड़ा सा और ले, मना मना करके खिलाने का वो जो आनंद है वो आनंद तो खत्म हो गया बफे सिस्टम में, तो इसलिए अगर इसका निषेध करते हैं तो ये सही है, और इनने लिखा है कि खड़े होकर के हार भी लिए जाते हैं, तो खड़े होकर के हम हार लेते हैं तो हम ऐसे नहीं थे आपके जैसे खड़े होकर बफे सिस्टम में जूता चप्पल पहने हुए, आप तो एक ही हाथ से खाते हैं, हम तो दोनों दोनों हाथ से खाते हैं, तो इसलिए उसमें जो मुख्य बात है वो है अशुद्धि की बात है उसमें कि कौन व्यक्ति फूड हैंडल कर रहा है अपन नहीं जानते हैं, इसलिए आप मंदिर के कपड़ों से हार ले लेते हैं क्या, नहीं लेते हैं अगर तो क्यों, देखो भैया मंदिर के कपड़ों से हार लेने में कोई निषेध नहीं है, लेकिन फिर भी मंदिर के कपड़े मंदिर के पूजा के काम के नहीं रहेंगे, ये ध्यान रखो, जिन व्यक्ति ने मंदिर के कपड़े से आहार दे लिया अब वे कपड़े मंदिर में पूजा के काम के नहीं रहे, अब वो आप अपने काम में ले लो, मंदिर में दूसरे नए ध्यान के रख दो अगर आपको मंदिर के कपड़े से ही देने का शौक है तो, क्योंकि अब वो दूसरे हो गए, आपने एक बार उनसे आहार दान दे लिया अब वो मंदिर में पूजा अभिषेक के काम के नहीं रहे, इसलिए हम निषेध करते हैं कि मंदिर के कपड़े पहन करके और आहार में शामिल ना हो, क्योंकि फिर वे अभिषेक के काम के नहीं रह जाएंगे और आप तो जाएंगे और अब भी वहां जाके उतार के और आ जाएंगे कि हमने तो दे लिया आहार इस तरह, तो इसलिए हम इसका निषेध कर देते हैं कि जो मंदिर के कपड़े पहन के आए हैं उनसे आहार नहीं देंगे, कल पारसनाथ भगवान का निर्वाण है,
कौन सी पूजा करना चाहिए, सामूहिक पूजन कब होगी। सामूहिक पूजन तो सवेरे से 7:30 बजे से कर रहे हैं और 7:30 से शुरू करके 8:05 तक जो है वो लास्ट लगभग आ जाएगा। 8:05 पे मैं कोशिश करूँगा आने की। मेरी बात पूरी सुने पहले, फिर उसके बाद आपको जो करना हो वैसा कर देना। हम लोगों ने अभी बैठ करके डिस्कशन किया कि 7 बजे कोई नहीं आ पाएगा, फोकट बात है, जो प्रैक्टिकल है उसको करना चाहिए, है कि नहीं। 7 बजे और फिर बाद में हो रहा है इंडियन टाइम से 7:30 बजे, इससे अच्छा एग्जैक्ट बोलो ना कि 7:30 बजे आना आपको, 7:30 के टाइम बता दो कि ये लिमिट है, उसमें न करना। आप चाहे जब शुरू करो, आप 7:30 बजे शुरू करेंगे आराम से, 8:05 तक आप आ जाएंगे निर्वाण कांड तक। तब तक मैं कोशिश करूंगा कि 8:05 या 8:10 पे आ जाऊं और मेरे सामने 5 मिनट में निर्वाण कांड पड़ा और सबने लाडू चढ़ाए और धीरे से अपन यहाँ से निकलेंगे बाहर और मंच पे पहुंच जाएंगे 8:15 पर। और उसके बाद फिर जो अपने को प्रवचन और महाराज का जो मनाना है दीक्षा दिवस, वो ठाक वास्ते 9:30 बजे तक अपन पूरा कर लेंगे। कोई भी इसमें ज़्यादा विस्तार या उसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा प्रोग्राम है। रही बात पूजा की, कौन सी करना चाहिए, तो पारसनाथ भगवान की पूजा करेंगे और निर्वाण कांड अंत में पढ़ेंगे, वही हो गया। अपने भगवान बड़े सीधे साधे हैं, वो बिल्कुल सत्य मान जाते हैं, वो कहते बस इतना ही कर लो, इससे ज़्यादा नहीं। सिख समाज में भोजन या लंगर के वक्त धनवान या गरीब में कोई फर्क नहीं होता, समाज के कार्य में सब बराबर है। जैन समाज में भोजन के वक्त भी भेदभाव नजर में आता है, समाज का कार्य होते हुए भी। महाराज मेरा किसी से राग द्वेष नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप कितने ही कहो, आप 100 दफे भी कहो कि मेरा कोई राग द्वेष नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर राग द्वेष से रहे तो कोई भी नहीं है। मैं भी लड़का डिक्लेयर नहीं कर सकता कि मेरा राग द्वेष नहीं है, सिर्फ भीतर बैठे हैं बाबा जी, बस वो बाबा जी से राग द्वेष नहीं है, बाकी जितने बाबा जी यहाँ बैठे हैं सब के राग द्वेष है, इसलिए ऐसा तो है ही नहीं। मन में प्रश्न उठा इसलिए पूछ लिया, अच्छा प्रश्न है, इसमें डरने से क्या बात। देखो कई जगह पर इस तरह की प्रक्रिया है, अपन को सबके प्रति प्रेम भाव समान भाव तो नहीं हो सकता, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं, समान भाव हो भी नहीं सकता। सत्येषु मैत्रीं गुणेषु प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपापरत्वं माध्यस्थ भावं विपरीतवत्त्वम्। अपने यहाँ तो ये लिखा है, समान भाव तो किसका हो सकता है, जो ध्यानस्थ है आत्मस्थ हो गया है वो ही साम्य भाव रख सकता है, इसकी उन्नति उसी को हो सकती समता भाव। बाकी सबके लिए क्या करना, प्राणी मात्र से मैत्री रखना, जो गुणों में ज्यादा है उनके प्रति हर्ष भाव सहज रूप से होगा, जिसकी श्रद्धा ज्यादा होती है अलग दिख जाती है और उसके प्रति हमारे मन में भी अनुराग अपेक्षाकृत दूसरे के अधिक होता ही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो गुणवान दिखाई पड़ता है उसकी पीठ थपथपाने का मन होता ही है, इसको पक्षपात नहीं कहेंगे, पर इसको राग द्वेष कहेंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए अगर कोई व्यक्ति गुणवान व्यक्ति की प्रशंसा करता है तो उसको राग द्वेष नहीं कहेंगे, उसके गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं। अपने व्यक्ति की गुण हो चाहे अवगुण हो प्रशंसा करना, ये राग, क्योंकि मेरा बेटा, लेकिन दूसरे के बेटे के गुणों की प्रशंसा करने में राग नहीं कहलाएगा, कहलाएगा भी तो धर्मानुराग कहलाएगा, उसके हित के लिए है वो प्रमोद भाव। और प्लिस केशु जीवेशु कृपा परत्वम, दीन दुखी को देख करके आप साम्य भाव धारण मत करें, कृपा करके करुणा भाव धारण करें, हाँ दीन दुखी को देख करके। और जो विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं, भगवान के बताए मार्ग से उल्टे मार्ग पर चल रहे हैं, उनके प्रति क्षोभ ना करें। दुर्जन क्रूर कुमार ग्रतों पर क्षोभ नहीं, साम्य भाव रखो, माध्यस्थ भाव। साम्य भाव का अर्थ वहां पर क्या है, समता भाव नहीं, माध्यस्थ भाव, न राग न द्वेष न निंदा न प्रशंसा। उल्टे रस्ते चल रहे तो निंदा करें, कहते नहीं कोई निंदा नहीं, और प्रशंसा भी नहीं करना, निंदा प्रशंसा दोनों से रहित माध्यस्थ भाव, ऐसे चार भाव कहे गए हैं। इसलिए अगर समाज में भोजन इत्यादि के वक्त भेदभाव देखने में आता है तो वो होगा ही, कोई त्यागी व्यक्ति आएगा तो आओ भैया ऊपर ले जाओ, भाई उनको सोच के भोजन में ले जाओ, ये जो है भैया वो है इस तरह भोजन करने वाले उनको वहां बिठा लो, इनको जरा इस तरह, जिससे हमारा विशेष धर्मानुराग होगा उसका ज्यादा ध्यान रखेंगे, जो सामान्य व्यक्ति आएगा भैया बैठो। और प्रेम तो सबसे है, प्रेम भाव सबसे इतनी सब आए हैं, लेकिन विश्व प्रमोदम, हाँ गुणगान के प्रति हर्ष का भाव अवश्य होगा ही होगा। इसलिए ये संभव नहीं है कि किसी भी समाज में कोई प्रक्रिया चलती है तो ठीक है, वो अपने हिसाब से करते हैं कि वहाँ से अपने आप ही, तो जब दर्शन इत्यादि करते हैं तो हमने कई बार कहा कि भगवान के दर्शन करते समय सब समान है, चाहे सेठ जी आओ तो और चाहे गरीब आदमी आओ, सब भगवान के दर्शन कर रहे हैं, सामान्य रूप से दर्शन करेंगे। ऐसा थोड़ी कि जब सेठ जी आएंगे तो हटो सारा मंदिर खाली करो, अब सेठ जी आ रहे हैं राजा विराज, ऐसा होता है फिर? ऐसा तो हमने किया नहीं, क्या सेठ जी आ रहे हैं इसलिए सबकी सीट अलग करो और भोजन इत्यादि सामग्री में सब जने हटो, अब सेठ जी को कराएंगे। अरे थोड़ा स्थान विशेष दे दिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई, जिनकी प्रबोधन है प्रशंसा कर दी, थोड़ा स्थान ज्यादा, भैया सेठ जी आ रहे हैं वो कितना ध्यान देते हैं, कितनी बार हमारा काम अटकता है उनसे हमारा काम होता है, बैठो आप बैठो, आपको हम विशेष रूप से दिखाते हैं, मेरी जाने नहीं जाए। अरे इतना तो चले गए, इसमें तो इसमें इतना वो नहीं है, और अगर इसको भी जीत सकें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। ईमानदारी से कहने सुनने में अच्छा लगता है, बाकी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। थोड़ा भाव आ ही जाता है, अपना कोई व्यक्ति होगा तो आ ही जाएगा उसमें थोड़ा भाव, अरे आप भी आ गए, बैठो हाँ जल्दी बैठो, और बाकी लोग कुछ भी नहीं आपसे, नहीं अब क्या करें, वो उनसे बहुत पुराना परिचय है, अब आपसे हो जाएगा, अगर आपके प्रति भी ऐसे वहां हो गए तो हो गई, हमारे बाहर में हो जाता, कोई व्यक्ति दिख जाता, अरे ये तो आप भी आ गए, हाँ जल्दी इसको लाओ पहले लाओ, इसको एक रोटी का ग्रास लाओ, ये तो आ ही नहीं पाता कभी, हफ्ते भर में एक आध बार आ पाता, लाओ तो इसको, आप तो रोटी दे रहे हैं। ऐसा हो जाता है, अभी हमने मना कर दिया था इतवार के दिन, कुछ लोगों को भारी बेड़ा लग गया, जबकि एक दिन पहले हमने खूब पूरा पूरा दिया था, उस दिन हमने कहा कि एक दिन नहीं दिए तो कोई बड़ा हो जाएगा, वो एक अभी छोटा सा रहा है बेचारा, हफ्ते भर में उसको दे लेंगे एक ग्रास, कितने हैं कुल जितने ग्रास हैं उतने तो लेना, वो एक तुमने और दे दिया तुम कल दे देना, तुमको बड़ा लग गया, कर लगो तो लगो, अब क्या कर सकते, हमने तो हमारा मन में बुलाई नहीं, आप रखो सत्तर रुपया से रखो, उसका दुख आप झेलो। देखो हम तो हमारे मंदिर ही था, हमारे मंदिर ही था कि आज आप नहीं भी देंगे तो कोई फर्क नहीं, और इसको दे लेंगे तो आप अपनी, ये कोऑपरेशन कहीं भी नहीं मिलता, कोई व्यक्ति ये नहीं कहता है कि नहीं पहले पहले इसको दे लेने दो, मैं भी देऊंगा, मैंने तो हाथ लगा लिया दे लिया हो गया, ऐसा कोई नहीं कहता। जो बहुत मुश्किल से अपना समय निकाल करके जो अभी अभी शुरू करता है, मेरा सबसे ध्यान देता चेहरा देख करके समझ में आने लगता कि उनकी कैसी है भावना, तब उससे अपने आप लगने लगता कि इनको और दे लेने दो और दे लेने दो इनको, वहां पर एक ही लाठी से सबको नहीं हाँका जा सकता, ये ध्यान रखना, हाँ कम से कम नहीं तो आपने एक ही लाठी से सबको हाँक दिया, ग्रह दीवान ग्रह दीवान क्या हो रहा, ऐसे थोड़ी उसमें जिसके जैसे भाव है उसको जैसे दान की प्रक्रिया में वो शामिल हो, आपको ये ठीक लगे तो ठीक है, अगर राग द्वेष लगे तो हमने तो पहले ही कही हम अभी अभी राग द्वेष गौ कहाँ है ही वो, तो इसी से सिद्ध हो गया कि हमारा अभी राग द्वेष है, इस मामले में तो रहता है सबका रहता है। आकाश जी के पास भी जब आप जयपुर वाले अभी आएंगे सुनाएंगे, हम गए थे और हमने जरा ही सा ये कहा कि हम जयपुर से आए हैं, महाराज जी ने बहुत बहुत नमस्तु कहा, तो महाराज जी ने हमसे दो बातें कर ली, अरे वाह 50 लोग खड़े थे, कोई तो नहीं कुछ नहीं हमसे करी, हमने जैसे ही कहा हम जयपुर से मजा आ गया, देखो अब दूसरों कर रहे थे तो अपन को छठ छठ लग रही है, अपन करके आ रहे थे जनता को सुना रहे सबको कि हम बात करके आ गए, ये क्या है, ये तो है ना, इसी को इसको क्या कहेंगे राजदेश कहेंगे क्या, नहीं भाई आप इतनी दूर से आए हैं और महाराज के पास आप उनकी सेवा में हैं, ऐसा सुनते ही साथ महाराज का आपको नमस्तु स्मरण, अभी आने वाला आरती सुनाएगा, वो 5 दिन रहे हम क्या क्या मजा आया है, हम तो तैयार ही बैठे उसको सुनने के लिए कि फिर क्या होगा, फिर कौन कौन महाराज के पास, सबके पास उसने रिफर किया होगा, हम रोज जाते हैं महाराज की आहार में तो उसको सबको आहार देने मिल गए होंगे, नहीं कभी बता दे रहा हूँ, जब वो आएगा तब तो बताएगी वो क्यों कैसे हो, मैंने बता दिया तो उसको, तुम तो इतने बोल रहे तुम कि महाराज जी किसी रोज आहार में जाता है तो फौरन, अभी अभी कौन लोग बता रहे थे, वो पीएल बनाना आए थे, वो बता रहे थे कि हम तो बाहर खड़े हुए थे हाथ जोड़ करके, आचार्य जी ने इशारा करके चौके में इनको दे लो, इनसे इनसे दिला दिया, इनको बुला लो इनको दिला, अब क्यों गुनचित प्रमोद सबके मन में रहता है, अरे भाई इतनी इतनी पैसा हमने के बावजूद भी इतना धर्म ध्यान करते हैं, दोनों चीजें एक साथ हैं सरस्वती और लक्ष्मी, तो क्या उसका उसका पुण्य भी नहीं है क्या, भैया जिसकी तरफ ध्यान गया है उसका कोई ना कोई पूर्व जन्म का पुण्य भी होगा, आपके पाप के उदय में आपको उसका पुण्य खल रहा, ये कहना चाहिए आपके पुण्य का उदय होता तो आपको उसके पुण्य में प्रसन्नता प्रसन्नता होती, अरे वाह आनंद आ, आपके सब अनेक उदाहरण सुना कल दो छोटे छोटे से एक ही घटना को दो लोग हैं जो अपने अपने ढंग से उसका अर्थ निकालते हैं। महाराज को साथ भेंट न करना चाहते कब करें, क्या भेंट कर सकते हैं, इसकी बहुत आसान सी प्रक्रिया है सुबह से और शाम तक कल, है ना। मंच पर भी आप आकर के महाराज को भेंट करें और पहले भी कर सकते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि क्या पहले कर सकते हैं, हमने कहा जरूर, जब वो कमरे में बैठे हैं तब भी आप कर सकते हैं और बाद में जब मंच पर आएंगे तब भी 10 मिनट का समय रखा है, 10 मिनट में सब अपने अपने लेकर के आओ, अपने घर से लाना और अपने घर से लाओ। किसी के पास कोई व्यक्ति पूछ रहे तुम्हारे घर में रखा हुआ समय सार भी, क्या हम वो ले सकते हैं, बहुत अच्छा। इसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि यहीं पर जो मिलेगा वो देना पड़ेगा, नहीं, यहाँ बाहर भी अगर आप तो वो दे दीजिएगा, इसमें झगड़े में दीजिएगा कि बोली लगेगी कि फलाना होगा, कल बिल्कुल कोई भी बोली नहीं लगेगी, बता दिया नहीं कुछ पहले से खुद पैदा खतरा होगा, पैसा खर्चा करोगे क्या करना, खर्चा वैसे करने का खर्चा करोगे बताओ, इनको हर एक चीज में पैसा, अरे जिसके पास जो है 400 रुपये अपना देके आएगा और कुछ जरूरी नहीं कि जब 1000 रुपये देगा तभी 400 देगा, वो अपने 10 रुपये का खरीद के आएगा वो दे देगा, उसकी बिक्री बन जाए तो वो उतना लेके देगा। शास्त्र दान है जिससे कि हमको ज्ञान प्राप्त हो, बस उद्देश्य क्या है कि हमको भी आपके जैसा ज्ञान प्राप्त हो, आपने तो ज्ञान प्राप्त करके अपना कल्याण कर लिया महाराज, हमें भी ज्ञान का, इसलिए हम आपको ज्ञान का उच्चारण दे रहे हैं विशुद्ध मन से। बात तो कुल इतनी है। अब बहुत सारे प्रश्न तो जो है वो रोज रह जाते हैं और कह रहे थे कि भजन सुना दो, अब कौन सा वाला सुना दें, वाह अच्छा, वाह इस प्रश्न का जवाब दो, अभी जवाब देंगे तो थोड़ा कड़ा जवाब हो जाएगा, कल मजे से देंगे, हाँ क्योंकि एकदम कड़ा जवाब आ गया मन में, प्रश्न पढ़ के सुना आपके मन में भी आएगा। महाराज आहार करते समय यदि दूसरे की शुद्धि का ख्याल रखें तो छठा गुण स्थान हो जाएगा, फिर तो ऐसा ना करके सातवें गुण स्थान वाला कार्य करना चाहिए। हमने प्लास्टिक में पढ़ दिया, वैसे कड़ा जवाब भी दिया जा सकता है, छठा सातवां गुण स्थान ऐसा हंसी खेल नहीं है, हमारा कौन सा गुण स्थान है हम नहीं कह सकते, को पहला गुण स्थान हो मिथ्यात्म पड़ेगा, आप क्या समझ रहे हैं, छठा सातवां गुण स्थान हंसी खेलने क्या प्राप्त करना, हाँ इसलिए छठा सातवां गुण स्थान को बहुत विशिष्ट, उसको ऐसे हल्के उसमें नहीं लेना, हमने जो आपको समझाया था कि कैसे समझें अपन प्रमत्त और अप्रमत्त अवस्था, प्रमत्त और अप्रमत्त अवस्था कैसी है, जैसे कि हमारे ग्रहण करने के भाव हो गए ये तो प्रमत्त अवस्था है, लेकिन ग्रहण करके आगम की आज्ञा के अनुसार ग्रहण करना है, मैं शोधन करूं ऐसा जो सावधानी है वो अप्रमत्त अवस्था है, ये प्रवृत्ति आत्म प्रमत्त अवस्था है, इसको हंसी खेल नहीं बनाइएगा, हाथ बंद करके अभी आपसे ग्रहण नहीं करूंगा, ऐसे करते
एक पत्र क्षाण भी मांग मत अग्निपथ तू न थकेगा कभी, तू न थकेगा कभी तू न मरेगा कभी, कर शपथ अग्निपथ ये महान दृश्य है कि चल रहा मनुष्य है, ये महान दृश्य है कि चल रहा मनुष्य है, अश्रु से रक्त से लख पथ अग्निपथ वृक्ष हों भले खड़े हों खड़े हों बड़े एक पत्र
ज्ञानं भोगी की जन साम्या इदानीमप्येषा बुध जनमरालैः परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे अनिर्वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभता वारोद्रेक त्रिभुवन जयी काम सुभता कुमारावस्थाया मपि निज बलाग्येन विजिता कुमारावस्थाया निजबलाकेन विजिता पुरन्नित्यानन्द प्रशमपदराज्याय सदिना नित्यानन्द प्रशमपदराज्याय सदिना महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महामोहातंक प्रशमन पराकस्मिग विष मोहातंक प्रशमन पराकस्मिग विष निरापेक्षो बंधुर् विदित महिमा मंगलकरा विदित महिमा मंगलकरा शरण्यः साधूनां भव भयभ्रतामुत्तम गुणो साधूनां भव भयभ्रतामुत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे नयन पथगामी भवतु मे महावीरास्तुकं स्तोत्रम् भक्त्या भागेन्दुना कृतम् या पठेत् शृणुयाच्चापि सा याति परमां गतिम् महावीर भगवान की एक पुस्तक आर तक पढ़ लिया था, फिर पांचवें और छठवें का अर्थ अपन पढ़ते हैं। क्या अर्थ है?